ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सभी ब्राह्मणों को ये ओम शांति का महामंत्र सिखाया है और इस महामंत्र की स्मृति ही हम सबको उस स्वरूप में टिका देती है। हम सभी शिव पिता परमात्मा की संतान, ईश्वरीय बच्चे, हम सभी संगम युगी ब्राह्मण कहलाते हैं। बाबा ने हम सबको संगम युगी ब्राह्मणों का सबसे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य कहें या जीवन कहें, जो बाबा ने हम सबको दिया है, लौकिक में भी ब्राह्मणों को ऊंचा माना जाता है और सब उनको ऊंची नजरों से देखते हैं। क्यों ब्राह्मणों को ऊंचा मानते हैं? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो कर्मकांडी होते हैं। कोई भी श्रेष्ठ कार्य होता है तो उस कार्य में पहले ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। तो ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो हम सभी बाबा के बच्चे, जिनको बाबा ने अपना बना करके हमें ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार और कुमारी का बाबा ने हमें टाइटल दिया है, तो ब्रह्मदान हम सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। ये संगम युगी टाइटल हम सभी ब्राह्मणों को परमात्मा शिव का ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो हम सभी ब्राह्मण बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली है ना? एक तो हम ब्राह्मण हैं, दूसरा हम सभी भगवान के बच्चे हैं और भगवान के बच्चे भाग्यशाली हैं। दुनिया में भी लोग कहते हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन कोई भी अपने को भगवान का बच्चा मान करके नहीं चलते। सिर्फ कहते हैं कि भगवान के ही बच्चे हैं, वो हमारा माता पिता है, सिर्फ कहने तक ही सीमित रहता है। अपने को प्रैक्टिकल जीवन में भगवान का बच्चा समझ करके कोई भी नहीं चलता है। और हम सभी बाबच्चे, सभी ब्राह्मण, हम किस स्मृति में चलते हैं, हमें कौन सा नशा है कि हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान ने हम सब बच्चों को एडॉप्ट किया है, हम भगवान की संतान हैं, ये हम सबको नशा है। और भगवान की संतान होने के नाते बाबा ने हम सभी को जो ब्राह्मणों का टाइटल दिया है, तो हम सभी संगम युगी ब्राह्मण हैं। तो जब हम अपने को संगम युगी ब्राह्मण कहलाते हैं, तो ब्राह्मण बच्चों की मर्यादाएं और ब्राह्मण बच्चों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। देखो, लौकिक में भी जो जिस कुल का होता है उस कुल अनुसार उन नियमों को वो पालन करते हैं। और अगर वो उन नियमों अनुसार नहीं चलते हैं तो कहते हैं इनको कुल से, जाति से निकाल दो, है ना। तो ऐसे ही प्यारे बाबा ने हम सभी को ब्राह्मण बनाया है और हम सभी बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो हमारे जो नियम हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो दिनचर्या है, वो हमारी क्या होनी चाहिए। हरेक मोटे मोटे रूप से तो सभी जानते ही हैं और उसको पालन भी करते हैं। जब तक उन नियमों और मर्यादाओं को पालन नहीं करेंगे तो हम बाबा के घर भी नहीं आ सकते, है ना। बाबा के घर आने का ये नियम मर्यादाएं पालन करने के बाद ही परमिशन मिलती है। तो आप सभी बाबा की जो नियम है, जो मर्यादाएं हैं, मोटे मोटे रूप से तो हर एक ब्राह्मण बच्चा जानता ही है, लेकिन बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय कहते हैं कि बच्चे मर्यादाओं में चलो, नियम पर चलो। जो ईश्वरी शिव बाबा की जो श्रीमत है उस श्रीमत पर चलो। तो बाबा की श्रीमत क्या है, हम ब्राह्मणों के लिए बाबा की श्रीमत क्या है। और जब हम बाबा के बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की आज्ञा पर चलते हैं, तो बाबा की श्रीमत और बाबा की आज्ञा पर चलने से क्या होता है, बाबा की हम सबको मदद मिलती है, बाबा की शक्ति मिलती है, है ना। तो जो नियम और मर्यादाएं हैं वो हम सबके जीवन में शक्ति भर देती है, है ना। और अगर हम उन नियमों और मर्यादाओं पर नहीं चलते हैं तो जैसे कि क्या, चल तो रहे हैं है? लेकिन चल रहे हैं और जो हमको ये इतनी सुंदर जीवन प्राप्त हुई है, उस सुंदर जीवन को हमें क्या करना है, संगम पर उस जीवन का हमें मौजों का सुख का अनुभव करना है ना। हम कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन भगवान के बच्चे सिर्फ कहना है उतना उस सुमृति का हमें नशा रहता है, है? हम भगवान के बच्चे हैं ये सुमृति रख करके हम हर समय चलते हैं। रहती है स्मृति कि हम बाबा के बच्चे भगवान के बच्चे हैं। जब ये स्मृति रहेगी कि हम भगवान के बच्चे हैं तो भगवान के बच्चे कैसे होंगे है? भाई भगवान के बच्चे कैसे होंगे? भगवान ने जो रचना रची है वो कौन सी रचना रची? शिव बाबा आकर के क्या करता है किसकी स्थापना करता है? सभी कहते हैं ना शिव बाबा नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करता है। शिव बाबा हम बच्चों मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया है, है? तो हम सभी देवता बनने वाले हैं और देवता बनने वाले हम भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान के बच्चे देवता बनने वाले हैं ये स्मृति ही हमें क्या करेगी है? ये स्मृति ही हमें हर श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देगी। हम कभी भी कोई भी श्रीमत के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। अगर हमें ये स्मृति है हम भगवान के बच्चे हैं तो हम बाबा की श्रीमत के या जो बच्चों हैं यादव हम उल्लंघन नहीं कर सकते। उल्लंघन जो होता है उसका कारण क्या रहता है? हमको वो स्मृति नहीं, और स्मृति नहीं है इसीलिए हमारे नियम मर्यादाएं ढीले हो जाते हैं। और स्मृति रहे तो कभी भी हमारे नियम और मर्यादाएं क्या नहीं होंगे? ढीले नहीं होंगे। तो बाबा हम बच्चों को जो स्मृति दिलाता है उस स्मृति को हम सदा स्मृति में रखें, और स्मृति में रखेंगे तभी हमारे प्रैक्टिकल जीवन में हम प्रैक्टिकल कर्म कर सकेंगे। तो हमें अभी प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाना है। कई बार बाबा कहते हैं ना कि तुम बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो, है ना? कि भगवान इस सृष्टि पर किस लिए आया है? इसलिए भगवान आया है। भगवान आया ही है हम सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए आया है। तो भगवान जो श्रेष्ठ कार्य के लिए आया है वो कार्य भगवान संपन्न कब करेगा है? जब हम भगवान के क्या बनेंगे? मददगार बनेंगे। और मददगार हमको कैसे बनना है? भाई बाबा के मददगार कैसे बनेंगे है? बाबा की सेवा जो होती है हमने वो सेवा कर ली, तन लगा लिया, मन लगा दिया, धन लगा दिया है? वो तो सब करते हैं, लेकिन जो बाबा की श्रीमत हमें हर समय मिली हुई है, हर पल मिली हुई है, हर संकल्प के लिए मिली है, हर कर्म के लिए मिली है, उस श्रीमत को कभी कभी हम सभी क्या कर देते हैं? यथाशक्ति कर देते हैं, है ना? इसको क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं ना यशा शक्ति नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे। तो नंबर वार क्यों कहा है? नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहता है, तो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहा? क्योंकि हम सबका जो पुरुषार्थ है वो क्या है, नंबरवार है, यथाशक्ति करते। जैसे बाबा कहता है वैसा हम संपूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए नंबरवार बन जाते हैं। तो हमें नंबरवार नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, है? हम सबका लक्ष्य क्या है, नंबर वन बनना है, है? तो नंबर वन बनने के लिए फिर पुरुषार्थ भी कैसा होना चाहिए, है? नंबर वन होना चाहिए ना। आप सभी भट्टी में आए हैं, तपस्या करने के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं, तपस्या किस लिए करते हैं? भाई भट्टी में तपते क्यों हैं? भट्टी में तप करके क्या होता है, जो भट्टी के अंदर डाला जाता है उसका निकालने के बाद रूप परिवर्तन हो जाता है। तो इसी प्रकार इस योग की भट्टी में, तपस्या की भट्टी में हम सभी यहाँ पर आए हैं। तो आप सभी यहाँ से क्या हो करके जाएंगे, परिवर्तन हो करके जाएंगे। हर एक को ये दिखाई देना चाहिए कि ये भट्टी में जा करके क्या बन गए, चेंज हो गए। हाँ भाई, क्या चेंज आई, परिवर्तन क्या आया, हमारे पुरुषार्थ के अंदर अभी परिवर्तन आना चाहिए। तो बाबा हम बच्चों को समय पर समय, हमेशा बाबा कहते बच्चे अपनी दिनचर्या पर ध्यान रखो। अब दिनचर्या में क्या आता है, दिनचर्या हमारी कब से शुरू होती है, अमृत वेले से शुरू होती है ना। तो अमृत वेला क्या है, है? भाई अमृत वेले दिनचर्या हमारी स्टार्ट होती है। तो हमारा अमृत वेला कब से स्टार्ट होता है, है? अमृत वेले का गीत कब बजता है, 3:30 बजे। तो हम सबको कब उठना है, है? कब उठना है, 3:30 बजे, है ना। क्यों उठना है, बाबा के साथ अमृत वेला क्यों करना है, क्योंकि अमृत वेले में शिव बाबा हम बच्चों को क्या करते हैं, प्रकाश देता है, हम बच्चों का वाहन करता है, हम बच्चों को शक्ति देता है, है ना। अमृत वेला, तो अमृत से क्या होता है, अमर पीने से अमर बन जाते, अमृत पीने से अमर बन जाते। तो शिव बाबा हम बच्चों को क्या करता है, अमृत वेले शक्तियां देता है, जिन शक्तियों से हम आत्मा क्या बन जाती है, अमर भव का वरदान प्राप्त करती। तो बाबा से जो शक्ति लेनी है वो शक्ति हम सबको अमृत वेले मिलती है। तो जो बाबा के बच्चे अमृत वेला पावरफुल करते हैं उनको कोई समस्या नहीं आएगी, सर्व समस्याओं का समाधान अमृत वेला है। तो हम ब्राह्मण जीवन में हमारा पहला नियम कहें, मर्यादा कहें, जो बाबा ने हम बच्चों को अमृत वेला दिया है उस अमृत वेले के ऊपर हमारा फुल अटेंशन होना चाहिए। कई कहते हैं कि भाई अमृत वेला नहीं उठता है, हमारा इतना कारोबार होता है, ये होता है, इसके कारण अमृत वेला नहीं होता है, शरीर थक जाता है इसलिए हम सो जाते हैं। लेकिन आप सबको पता हो कि बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे अमृत वेले बाबा हम बच्चों को सर्व शक्तियों से समर्थ बनाता है, शक्ति भरता है, पावर भरता है, और उस शक्ति हम लेते हैं वो शक्ति हमको सारे दिन कार्य कराती। जो अमृत वेले पावरफुल करेंगे वो सारा दिन थकेगा नहीं, कोई उसको कोई थकावट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सवेरे सवेरे उसने अपने जीवन में हर शक्ति को बाबा से प्राप्त कर लिया। जो भगवान से हमको शक्ति मिल गई, बाबा से हमको वरदान मिल गया, बाबा की शक्ति मिल गई, वो शक्ति अगर हम धारण करते हैं तो हमको फिर सारे दिन थकावट होगी नहीं होगी। बाबा ऐसा हाथ फेरता है जो सारा दिन मालूम भी नहीं पड़ता है, है? पड़ता है नहीं पड़ता है। तो अमृत वेला हमको पावरफुल करना है, और अमृत वेला जिनका पावरफुल होगा वो ही सर्वशक्तिवान बन सकेगी। चाहे फिर हम कितना भी सारे दिन योग करें, पुरुषार्थ करें, लेकिन अमृत वेले के समय पर अगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो सारे दिन का पुरुषार्थ फिर उतनी शक्ति नहीं भरता है। जैसे देखो लौकिक में भी कहते हैं कि सवेरे सवेरे कोई बीमार होता है, कोई पेशेंट होते हैं, कोई कमजोर होते हैं, तो कहते सवेरे सवेरे इनको क्या दो, ऐसा हाँ शक्तिशाली भोजन खिलाओ तो वो सारे दिन उसको एनर्जी देगा, है ना। तो हम आत्मा को भी एनर्जी भरने वाली शक्तिशाली है अमृत वेला। तो जब आत्मा पावरफुल हो जाएगी तो कर्म कौन करती है, आत्मा करती है ना। तो आत्मा वो कर्म करेगी, सारे दिन जो भी कर्म करेगी तो वो कर्म भी उसका सहज हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को अमृत वेले के ऊपर बहुत अटेंशन किया है। देखो यहाँ भी सब अमृत वेले में आते हैं ना योग करने के लिए, तो बाबा शक्ति भरता है। तो हमें अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करता। कौन कौन करते अमृत वेला, जिनका कभी मिस नहीं होता वो हाथ खड़ा करो, और जो कभी कभी करते हैं, आज से भट्टी से ये संकल्प लेकर के जाना कि कुछ भी हो जाए हमको अमृत वेला मिस नहीं करना है। अमृत वेले में बाबा से डायरेक्ट शक्ति मिलती है ना, तो बाबा की डायरेक्ट शक्ति को हमें ग्रहण करना है। तो जब डायरेक्ट मिलेगी तो हम शक्तिशाली बन जाएंगे। एक अमृत वेले के ऊपर बाबा हम बच्चों को अटेंशन दिलाता है, और दूसरा बाबा हम बच्चे को कौन सा पढ़ाई, कौन पढ़ाता है, हमारा टीचर कौन है, है? हमारा टीचर कौन है, शिव बाबा। स्वयं भगवान टीचर बन करके हमको पढ़ाने के लिए रोज आता है। आज भी मुरली में सुना ना, कौन पढ़ाता है, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाता है ना, कहा ना बाजू में बैठ के पढ़ाता हूँ। तो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को रोज पढ़ाने के लिए आता है, एक दिन भी मुरली मिस नहीं होती। आपने देखा ना मुरली डेट वाइज आती है, है? तो डेट वाइज कैसे आई मुरली, बाबा ने डेट वाइज चलाई तो डेट वाइज आई ना, है? और बाबा ने नहीं चलाई होती तो आती। देखो बाबा, ब्रह्मा बाबा की एक बात सुनाती हूँ, लास्ट दिन भी बाबा ने मुरली चलाई। आपको पता है बाबा का 18 जनवरी को बाबा जब अव्यक्त हुए तो सुबह में बाबा को इतनी खांसी थी कि बाबा बोल नहीं सकते थे, तो बाबा ने आकर के बैठ करके सब बच्चों को योग कराया, सकाश दिया, हाँ कहा आज रथ ठीक नहीं है इसलिए बाबा ने मुरली नहीं चलाई। फिर शाम को थोड़ा ठीक लगा तो कहा आज बच्चों को मुरली नहीं सुनाई है, तो फिर बाबा ने आकर के शाम को मुरली, बाबा ने आधा घंटे मुरली चलाई है, और फिर मुरली चलाने के बाद बाबा कमरे में गए, और कमरे में जाने के बाद बाबा अव्यक्त हुआ। माना लास्ट दिन भी बाबा ने हमको मुरली सुनाई। तो बाबा रोज मुरली सुनाता है, और पढ़ाई पर जितना हमारा अटेंशन होगा, बाबा कहता है ना बच्चे पढ़ाई ही है हमें क्या देती है, पद देती है, है? जितना पढ़ाई पर अटेंशन होगा पढ़ाई से हमें पद मिलेगा। तो ब्राह्मण बच्चों को हमेशा अपनी पढ़ाई के ऊपर विशेष अटेंशन देना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं हफ्ते में एक दिन आ गए, मुरली सुन ली, चले गए। नहीं, रोज बाबा की मुरली। और आजकल तो ब्राह्मणों को एक और माया आ गई, पता है क्या माया आई है? हैं? भाई मुरली तो पढ़नी है, मुरली तो सुननी है, चलो मुरली मोबाइल में सुन ले। हैं? मोबाइल में मुरली सुनने से क्या होगा? ताकत आएगी, शक्ति आएगी? हैं? आएगी? हैं? ऑनलाइन पढ़ाई होगी? भाई स्टूडेंट को कहाँ जाना पड़ता है? कॉलेज में जाना पड़ता है ना, स्कूल में जाना पड़ता है ना। हाँ, आजकल तो कोरोना के समय तो ऑनलाइन भी चल गया था, हैं? लेकिन ऑनलाइन का क्या हुआ? हाँ, कितना मिसयूज किया सबने, हैं? फिर क्या किया? ऑनलाइन बंद किया तो फिर रेगुलर चालू किया ना। इसी प्रकार हम ब्राह्मण बच्चों को ये नहीं कि मुरली मोबाइल में हमने पढ़ ली और सुन ली, हो गया काम। नहीं, मुरली माना। हाँ, बाबा मुरली कहाँ सुनाता है? कहा ना, मधुबन में मुरली बसती है। बाबा रोज सुनाने आता, मुरली सेंटर पर बसती है। मुरली सेंटर पर हमको रोज सुने। बाबा ने इतने सेंटर क्यों खुलवाए? हाँ, आप सोचो, इतने सेंटर खुलाए, इतनी बहनों को बाबा ने वहां बिठाया। हाँ, क्यों बिठाया? हाँ, बाबा ने कुछ तो सोचा होगा ना कि भाई मेरे बच्चे आएंगे, बाबा के घर में आएंगे, तो बाबा के घर में जाकर जो हमारी कहते हैं ना, हमारी क्या है, गॉडली यूनिवर्सिटी है, तो गॉडली यूनिवर्सिटी में तो जाना पड़ेगा और विधि से सुनना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ, एक बार जानकी दादी से हम सब आपस में बहने कभी कभी मिलते थे, तो दादी हमेशा हम सबको सुनाती थी कि बाबा की जो मुरली है, मुरली को भी विधि से सुनो। विधि से नहीं सुनेंगे तो सिद्धि कैसे मिलेगी? तो मुरली सुनने की विधि क्या है? मुरली सुनने की विधि है कि मुरली सुनने के लिए हमको बाबा के घर में आना है, और जो बाबा ने मुरली का समय दिया हुआ है, उस समय पर बाबा हम बच्चों को मुरली सुनाता है तो बाबा की शक्ति हमको मिलती है। अभी जैसे यहाँ 7 बजे मुरली चलती है, बाबा का समय वो समय है। अगर उस समय पर हम सेंटर पर जाकर मुरली सुनते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। फिर सारे दिन हम मुरली सुनेंगे तो क्या मिलेगा? हाँ, देखो, भोजन ताजी खाते हैं तो ताकत मिलती है। अगर भोजन बासी हो जाता है तो ताकत मिलेगी? हाँ, कितना भी अच्छा भोजन होता है, फ्रेश ताजा खाने से शक्ति मिलती है। और वही भोजन अच्छा हो, ताकत वाला हो, और अगर उसको हम शाम को बासी करके खाते हैं तो वही भोजन क्या करता है? जो फायदे के बदले नुकसान कर देता है। भले बाबा की ये ज्ञान का भोजन नुकसान नहीं करेगा, लेकिन हमको जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं हो। तो बाबा की मुरली माना, बाबा के समय पर हमको बाबा की मुरली सुननी चाहिए, और जो समय पर बाबा की मुरली सुनेगा उसके जीवन में ही ताकत भरेगी। हाँ, कोई कारने अकारने बात होती है, कहीं की ऐसी जॉब होती है या कुछ होता है, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन कोई ऐसे ही अपने को अलबेलेपन में हम अपने को चला लेते हैं तो बाबा कहते ब्राह्मण माना अलबेलापन खत्म। अलबेलापन आलस, ये भी क्या है? अलबेलापन आलस, ये भी विकार है। तो ब्राह्मणों के जीवन में अलबेलापन और आलस नहीं होना चाहिए। तो बाबा की जो मुरली है, हमारी जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई के ऊपर हमें विशेष विशेष अटेंशन देना चाहिए। ये सच्चे ब्राह्मण का निशानी, गॉडली स्टूडेंट की निशानी है, जो अपनी पढ़ाई के ऊपर विशेष अटेंशन देगा। और फिर बाबा ने हम बच्चों को सारे दिन की दिनचर्या के अंदर क्या दिया है? ट्रैफिक कंट्रोल है दिया है ना। भाई सारे दिन में कितनी बार ट्रैफिक कंट्रोल होता है? देखो हो गया ट्रैफिक कंट्रोल। हाँ तो मैं सुना रही थी ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर भी विशेष क्या रहना चाहिए, अटेंशन रहना चाहिए। और दूसरी बात कि हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं, तो ब्राह्मण बच्चों को बाबा को भोग रोज स्वीकार कराना चाहिए। बाबा को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। माताएं कौन कौन है जो बाबा को भोग लगाती हैं? ठीक है, तो सभी को बाबा को भोग लगा करके भोजन खाना है। क्यों बाबा को भोग लगाना है? क्योंकि वो खिलाने वाला है, हाँ? तो खिलाने वाले को खिला करके बाबा को स्वीकार करा करके ही हमको भोजन खाना है। भगवान संगम पर ही आपका स्वीकार करेगा, सारे कल्प में आप बाबा को भोग नहीं खिला सकेंगे, संगम पर ही बाबा भोग खाता है, हाँ? खाता है बाबा, खाता है ना, स्वीकार करता है हमारा। हम बाबा को भोग लगाते हैं तो बाबा हम बच्चों को, बच्चों का स्वीकार करता है। तो भोग भी रोज लगाना चाहिए। और दूसरा नुमा शाम का योग कभी मिस नहीं करना चाहिए। देखो नुमा शाम 6:30 से 7:30 बजे, ये भी जैसे अमृत वेले का महत्व है वैसे ये नुमा शाम का समय भी बहुत पावरफुल समय है। इस समय पर भी भक्ति में कहते हैं देवताएं घूमने निकलते हैं, भक्ति में भी क्या करते हैं, लाइट जलाते हैं, दीवा जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा करते हैं। तो नुमा शाम का समय भी बहुत पावरफुल रहता है। तो बाबा ने हम बच्चों के लिए नुमा शाम का योग भी रखा है, तो नुमा शाम का योग भी हम ब्राह्मणों को जरूर करना है। कहाँ भी हो समय निकाल करके हमें बैठना है। फिर रात्रि को तो बाबा को सोते हुए गुड नाइट करके बाबा के साथ में सो जाना है। तो अपनी दिनचर्या के ऊपर हम ब्राह्मणों का बहुत अटेंशन होना चाहिए। और जितना ब्राह्मणों का दिनचर्या पर इस पर अटेंशन होता है तो हमारा जो जीवन है ना वो बहुत स्मूथ चलता है। कोई भी परिस्थितियों में हम कभी भी डगमग नहीं होंगे, हा? तो ये जो बाबा ने हम बच्चों को नियम दिए हैं इन नियमों पर चलेंगे तो ही हमको क्या होगा, कहते हैं ना नियम में फायदा है, हा? तो जितना नियम में कायदे में फायदा होता है, तो जितना कायदे पर नियम में चलते हैं उतना हमको फायदा मिलता है। तो जो भी बाबा ने हम सबको दिनचर्या दी है उसके ऊपर विशेष सभी, हाँ, आज से क्या करेंगे, अटेंशन देंगे और एक भी थोड़ा सा भी इसके अंदर ऊपर नीचे नहीं करेंगे। पक्का सभी को है, हाथ खड़ा करो जो सबने पक्का किया। भट्टी से पक्के करके जाना है, भट्टी से, भट्टी में कुछ तो लेके जाएंगे ना, तो भट्टी से ये लेके जाना कि हमारी जो दिनचर्या बाबा ने दी है उस दिनचर्या को हम कभी भी ऊपर नीचे नहीं करें। तो हमारा जो पुरुषार्थ है ना वो सहज चलेगा, ये जीवन की गाड़ी बहुत सहज चलेगी, उसमें कोई भी परिस्थिति में हम कभी भी घबराएंगे नहीं, कभी हारेंगे नहीं। ओम शांति।